अगला दिन शुरू हो गया था। आहाना, अंतरा और जयंती जी किचन में लगी हुई थीं। सबके उठने से पहले ही उन्होंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। 7-8 बजते बजते सभी नहा धोकर फ्रेश होकर नाश्ते के लिए आ गए थे। तीनों लेडीज ने मिलकर उनकी पसंद के अनुसार चाय, जूस और नाश्ता परोसा। नाश्ते के बाद सब साथ बैठे। इस पूरे दौरान अक्षय की नज़रें कई बार जाने अनजाने आहाना पर ठहर गई थीं। गुलाबी रंग के खूबसूरत सूट में वो बड़ी प्यारी लग रही थी। बालों को फ्रेंच चोटी में बांधा हुआ था, जो उसकी कमर पर नागिन सी बलखा रही थी। कानों में झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी सजी हुई थी। दोनों हाथों में दादी के पहनाए कंगन अभी भी मौजूद थे। सादगी में लिपटी हुई वो खूबसूरती की अनोखी मिसाल सी थी, जो अब उससे जुड़ चुकी थी, जिसका एहसास अक्षय को उसकी उंगली में चमकती हुई इंगेजमेंट रिंग करवा रही थी। आहाना कुछ देर वहीं सबके बीच रही, फिर कमरे में चली गई। कुछ देर में उसे भी निकलना था। अपना पर्स जमाने के बाद वो वॉशरूम में चली गई। अंतरा भी कमरे में आ गई, ताकि कॉलेज जाने के लिए तैयार हो सके। अभी वो अपना बैग पैक ही कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने पलट कर देखा तो अन्वय दरवाजे पर खड़ा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अन्वय के इजाजत मांगने पर अंतरा ने सिर हिला दिया। अन्वय अंदर आ गया। अंतरा उसके सामने हाथ कमर पर बांधे डंटकर खड़ी हो गई। कहो, सबको छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? भाभी कहाँ है? अंतरा के सवाल के जवाब में अन्वय ने उल्टा उसी से सवाल कर लिया, जिस पर अंतरा ने एक बार फिर उसे सख्त अंदाज में जवाब दिया। वॉशरूम में। क्यों, क्या हुआ? जीजी को क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ काम था उनसे? जी बिल्कुल, काम तो था, और वो भी बहुत ज़रूरी। अन्वय को जाने क्यों पर अंतरा के ये तेवर बड़े पसंद आते थे, जबकि उसकी ये दिल जलाने वाली मुस्कान से अंतरा बुरी तरह चिढ़ जाती थी। सो आज भी वो खींच उठी। क्लोजअप का ऐड करने से फुर्सत हो गई हो तो काम बताओ। उसे यूं खींचते देखकर अन्वय मन ही मन हंस पड़ा, पर बाहर मुस्कान भी समेट ली। हमें निकलना था तो भाभी का फ़ोन नंबर लेना था, ताकि बातचीत हो सके। अन्वय का जवाब सुनकर अंतरा ने फौरन ही इनकार कर दिया। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अन्वय ने चौंकते हुए हैरानी से सवाल किया। जवाब में अंतरा ने भी सख्त नज़रों से उसे घूरते हुए उस पर सवाल दागा। किसे चाहिए? हमें चाहिए, अन्वय ने तुरंत ही जवाब दिया। इसके साथ ही अंतरा के लबों पर शैतानी मुस्कान बिखर गई। उसने बड़े ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, तो जब नंबर तुम्हें चाहिए तो उसे पाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। इतनी आसानी से तो अपनी जीजी का नंबर मैं नहीं देने वाली, और ना ही उन्हें देने दूंगी। खुद से पता लगा सको तो लगा लो पता जीजी का नंबर, हम तो नहीं देंगे। अंतरा के अंदाज देखकर अन्वय के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए, और उसने भौं उछालते हुए सवाल किया, चैलेंज कर रही हो? बिल्कुल, चुनौती दे रही हूँ। ठीक है फिर, अब तो भाभी के साथ साथ उनकी छोटी बहन का भी नंबर निकाल लूंगा। अन्वय ने भी मुस्कुराकर उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। अंतरा ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए बड़े ही गर्व से कहा, इतना भी आसान नहीं बच्चू, निकाल कर दिखाओ तो मानू। फिर तो अब तुम्हें मनवा कर ही रहूंगा कि अगर तुम शेर हो तो अन्वय सहगल सवा शेर है। अब तो तुमसे अगली बार बात फोन पर ही होगी, इंतजार करना। अन्वय की बात सुनकर अंतरा यूं मुस्कुराई जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो, पर अन्वय ने बुरा नहीं माना। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखरी हुई थी। एक बार फिर दिल जलाने वाली मुस्कान उसकी ओर उछालते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। पहले तो अंतरा ने मुंह ऐंठकर अपनी नाराजगी और खींच जाहिर की, फिर शैतानी मुस्कान उसके लबों पर बिखर गई। यहां अन्वय कमरे से निकला और आहाना ने कमरे में कदम रखते हुए सवाल किया, अंतरा कौन आया था? आहाना का सवाल सुनकर अंतरा ने झट से अपने चेहरे के भावों को दुरुस्त किया और उसकी ओर पलटते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, जीजी आपके देवर आए थे, कह रहे थे कि वो बस निकलने ही वाले हैं तो आपको बुला रहे हैं। ओह, आहाना ने होंठों को गोल करते हुए हामी भरी और दोनों नीचे आ गईं। नीचे वाकई में सब जाने को तैयार थे। अंतरा और अन्वय की नजरें टकराईं और चेहरे के भाव कुछ बदल गए। आहाना ने सबके पैर छुए, अक्षय ने भी अपने ससुराल वालों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर सहगर परिवार ने उनसे विदाई ली। जाने से पहले फलक और अन्वय दोनों ने आहाना से बात की। अक्षय ने भी जाने से पहले एक नज़र उसे देखा, फिर उससे बात करने की अधूरी इच्छा अपने दिल में छुपाए जाने के लिए निकल गया। आहाना ने जाते हुए अक्षय की पीठ पर नजर डाली और कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दी। उनके जाने के बाद यहाँ भी सब हड़बड़ी में अपने अपने ठिकानों की ओर बढ़ गए। सगाई की खुशी में जहाँ स्कूल में सबने आहाना को बधाई दी, वहीं उसने भी अपने कलीग्स और साथी टीचरों का मुँह मीठा करवाया, और इस पूरे दौरान एक शर्मीली सी मुस्कान उसके लबों पर बिखरी रही। पल्लवी बस उसे खुश देखकर सुकून महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ अक्षय सबके साथ दोपहर बाद घर पहुंचा और कुछ देर आराम करने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल गया, जहां उसके साथी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे घेर लिया। खूब बधाइयां और गुड विशेज मिली। उसने भी सबको मिठाई खिलाकर उन्हें अपनी खुशी में शामिल किया। अभिजीत जी ने फोन पर जितेंद्र जी को कुशल से पहुंचने की खबर भी दे दी थी। अपने कमरे में बैठा अन्वय कुछ देर पहले ही सोकर उठा था। निशान से चैट करने के बाद अब वो अपने फोन में अंतरा की फोटो देख रहा था, जो कल रोके और सगाई के दौरान चुपके से उसने ली थी। बीते 2-3 मुलाकातों से बहुत जुदा लग रही थी कल वो। खूबसूरत सा कुर्ता और नीचे से पैंट पहने, खुले बालों को कंधों पर फैलाए, हल्के मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी और उसके तीखे नयन नक्श आकर्षक फेशियल फीचर उसे खास बना रहे थे और उस पर उसका वो बुलंद बेबाकी भरा अंदाज तीखे तेवर कहर ढाते थे। कोई चाहे भी तो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, ऐसा आकर्षण था उसके व्यक्तित्व में। आते आते भी एक चैलेंज दे गई थी। कहां उसने सोचा था कि आहाना के साथ उसका भी नंबर ले लेगा। आहाना का नंबर अक्षय के काम आएगा जबकि वो इस दिलचस्प लड़की को कुछ और जानने की कोशिश करेगा, पर यहाँ तो आहाना के नंबर के ही लाले पड़े थे। पर उसने भी तरकीब सोच ली थी। निशांत का नंबर ले आया था, उससे कनेक्शन बिठाकर दोनों के नंबर आसानी से निकलवाए जा सकते थे। वैसे तो फलक से भी कह सकता था, पर फिर उसके सवालों की बौछार शुरू हो जाती, बस इसलिए ये सेफ रास्ता चुना था उसने। कुछ देर अंतरा के बारे में सोचता रहा, फिर तैयार होकर शोरूम के लिए निकल गया। एक बार फिर वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा था। वक्त के साथ सब आगे बढ़ने लगे थे, पर दो दिल जैसे उन्हीं बीते लम्हों में अटके हुए थे। अक्षय और अंतरा की सगाई को लगभग 3 महीने होने वाले थे। शादी की डेट तय की जा चुकी थी। नवंबर में त्रिशांत की शादी थी। त्रिशांत का कहना था कि अगले साल नवंबर दिसंबर में ही आहाना की शादी की जाए, पर लड़के वाले इतना इंतजार नहीं करना चाहते थे और दोनों परिवारों की सहमति से होली से पहले वाले शुभ मुहूर्त पर बात पक्की की गई, मतलब फरवरी में आहाना और अक्षय की शादी होनी थी। आहाना के पास कुल मिलाकर सगाई के बाद 6-7 महीने ही थे अपने परिवार संग बिताने को। ये सोचकर वो कुछ उदास भी हुई, शिकायत भी की कि इतनी भी क्या जल्दी है उसे घर से भगाने की, पर मम्मी पापा की इच्छा के आगे मौन रह गई। उनका मान रखते हुए सर झुकाकर उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। इन बीते 3 महीनों से ऐसा एक दिन नहीं गया था जब उसने अक्षय के फोन या मैसेज का इंतजार नहीं किया था। सगाई और शादी के बीच का वक्त होता ही इतना खूबसूरत है। एक दूसरे को जानने समझने बातें करने की इच्छाएं परवान चढ़ रही होती हैं। जब वो त्रिशांत और पल्लवी को बात करते देखती तो उसके भी दिल के किसी कोने में ये अरमान जन्म लेते कि अक्षय भी उसे फोन करे, उससे बात करे ताकि वो भी उसे जान सके समझ सके। पर अफसोस के इंतजार में 3 महीने बीत गए थे पर अक्षय का फोन नहीं आया था। फोन तो दूर, एक मैसेज तक नहीं आया था।
वजह वो नहीं जानती थी, पर जब जब मन भटकता बुरे ख्याल आते तो ये कहकर खुद को दिलासा दे देती कि शायद उनके पास नंबर ही नहीं होगा। हालांकि जानती थी कि ये मुमकिन नहीं है, उसके घर में सबके पास उसका नंबर था। जयंती जी के कहने पर हर कुछ दिनों वो रूपाली जी से फलक से बात करती थी। फलक के साथ साथ अन्वय खुद सामने से उसे फ़ोन करते और दोनों का खुशमिजाज मिलनसार नेचर ही था जिसके कारण आहाना उनके साथ काफ़ी हद तक सहज हो गई थी। सबसे बात होती बस एक अक्षय से ही नहीं होती थी, जिस पर कई दफ़ा वो खुद को ये भी समझाती कि उसका काम ऐसा है वक्त नहीं मिलता होगा उसे, पर लाख दलील के बावजूद ये ख्याल गाहे बगाहे उसके मन को बेचैन कर जाता कि क्या उसने जो महसूस किया था वो उसका भ्रम था। क्या अक्षय को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं? क्या उसका कभी उसे बात करने का मन नहीं चाहता? उसने पल्लवी और अपने साथी कई टीचर्स को देखा था, सगाई के बाद फोन पर बात होती थी और वो बहुत खुश नजर आती थी, पर अक्षय ने उसे एक बार भी फोन नहीं किया, ये बात उसे उदास कर जाती थी। मन भटकता पर वो किसी तरह खुद को समझा लेती। अक्षय से तो बात नहीं हुई थी पर अन्वय से अक्षय के बारे में बहुत कुछ सुनती थी। फलक भी उसे अक्षय के बारे में बताती रहती थी ताकि उसे अक्षय को समझने में आसानी हो। फिलहाल तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम भूलकर अपने भाई और बेस्ट फ्रेंड की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। उसकी सगाई के बाद से ही दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। आहाना दोनों से जुड़ी हुई थी तो कभी इस तरफ से शॉपिंग पर जाती तो कभी पल्लवी उसे अपने साथ ले जाती। आहाना खुश थी और अंतरा भी बड़ी एक्साइटेड थी अपने भैया की शादी के लिए। आहाना के साथ वो भी जाती और दृशांत के खूब पैसे खर्चती। सिर्फ आहाना ही नहीं थी जो अक्षय से बात करने को दिल ही दिल में मचल रही थी। अक्षय भी बड़ा बेताब था उसे बात करने के लिए, पर अपने दिल और दिमाग के कश्मकश में उलझा हुआ था। आहाना को जितना उसने बीती 2 मुलाकातों में जाना था, वो एक शर्मीली मासूम सी लड़की थी। उसके सामने तो नज़र उठाकर उसे देखती भी नहीं थी, बात करना तो बहुत दूर की बात थी। अक्षय के मन में एक भय था कि पता नहीं उसके फ़ोन करने पर वो कैसे रिएक्ट करेगी, उससे बात करेगी भी या नहीं। कभी लगा भी तो नहीं कि उसके मन में भी उसे लेकर कुछ एहसास है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। ये बात और उसकी हिम्मत को कमज़ोर कर रही थी। बस इसलिए वो फ़ोन करने से कतरा रहा था, जबकि सगाई को 5 दिन भी नहीं हुए थे और अन्वय ने उसे आहाना का नंबर दे दिया था, जिसके बदले अक्षय से सौदा करके अपनी बात मनवाई थी। नंबर तो आहाना के पास भी था अक्षय का, दृशांत ने दिया था, पर साथ ही ये भी समझाया था कि खुद सामने से पहले फ़ोन या मैसेज ना करे, गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। अक्सर ऐसी बातों से लड़की को बेसब्र माना जाने लगता है और दबे छुपे शब्दों में उस पर तंज भी किया जाता है, खासकर तब अगर ये बात परिवार को पता चल जाए। उस लड़की की इमेज खराब होने का डर रहता है। सगाई भले हो गई पर एक मर्यादा की रेखा होती है जिसे लांघना अक्सर नारी की रुसवाई का कारण बनता है, और ये उसने अपनी आंखों से अपने दोस्त की बहन के साथ होते देखा था।
रिश्ता तय होने के बाद लड़की ने पहल की और आगे जाकर बात बिगड़ गई और सबकी उंगलियां लड़की पर ही उठी और ससुराल से लेकर घर वालों तक ने उसे तानों से नवाजा था। वो अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ होते नहीं देखना चाहता था और आहाना उसकी फिक्र समझ रही थी, इसलिए बिल्कुल शांत थी। शांत तो अन्वय भी था, रोज अंतरा की फोटो देखकर मुस्कुराता, नंबर भी था पास, पर अब तक कोई मैसेज या फोन नहीं किया था उसने। वजह तो वही जानता था, जबकि अंतरा तो खुद में मस्त थी, उसे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। अक्षय और आहाना भले ही दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, उनके बीच कोई बात नहीं होती थी, फिर भी उनकी उंगलियों में सजी सगाई की अंगूठी उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास करवा ही देती थी। उनके बीच का वो रिश्ता जिसे अब नाम मिल चुका था, उन्हें एक दूसरे से जोड़ता था। वो जज्बात जो उनके दिल में बसे थे, वो वक्त के साथ और गहरे होने लगे थे। अक्सर खामोशी से एक दूसरे की और सगाई की तस्वीरें देखकर मुस्कुराते थे। ये भी एक अलग ही एहसास था, बहुत खास था, जिसमें थोड़ी तड़प कुछ बेकरारी घुली हुई थी। त्रिशांत और पल्लवी के लिए ये वक्त बेहद खास था। जहां त्रिशांत गंभीर था, वहीं पल्लवी चंचल। दोनों की रोज घंटों बात होती, शादी की कुछ शॉपिंग भी उन्होंने साथ की। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता था जो अब शादी के अटूट बंधन में बंधे जा रहा था। शादी के कार्ड्स बन चुके थे, एक कार्ड सहगल निवास भी पहुंचा था। जितेंद्र जी खुद देने आए थे और सब परिवार उन्हें आमंत्रित भी किया था। मेहमानों से दोनों घर भरे हुए थे। शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी थी। दिन में रस्में होती और रात को बच्चों की महफिलें जमती। दृशांत के बाद सीधे आहाना की शादी में मिलना था, तो सब रात में मिलकर खूब मस्ती मजाक करते, नाच गाना चलता, कभी इस घर रौनक लगती तो कभी उस घर। दृशांत और पल्लवी दोनों ही अपनी शादी की हर रस्म दिल से एंजॉय कर रहे थे। कल शादी थी और आज दोनों घरों में रतज का था। औरतें शादी के गीत गाने में मशगूल थीं। दृशांत अपने कजिन भाइयों संग था और पल्लवी के भाई भी यहीं आए हुए थे, जबकि सारी लड़कियां पल्लवी के घर गई हुई थी। दोनों जगह खूब रौनक लगी हुई थी, महफिल जमी हुई थी, गप्पे शप्पे के साथ खूब मस्ती मजाक चूहाबाजियां हो रही थी, छेड़छाड़ भी जारी थी। आहाना की किसी बहन ने अक्षय का नाम लेकर आहाना को भी छेड़ दिया और वो शर्माकर खुद में सिमट गई। ये एहसास ही काफी था उसके दिल को धड़काने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।